તારીખ 4/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 93 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 81 પ્રવચન 1/2 કલાક છે.
प्राप्ति के लिए धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेते हैं, चाहते हैं कि हम संसार में कभी दुखी नहीं हुए, संसार में हमेशा अनुकूलता बनी रहे, ऐसे सांसारिक सुख की वांछा प्राय के क्षेत्र में करने में आती है. लेकिन जन्म मरण का नाश कम जगह सुनने में आया है. जैन धर्म पुण्य उत्पादक नहीं है, जैन धर्म है वो पुण्य का उत्पादक नहीं है, ये पवित्रता का उत्पादक है. पुण्य का फल संसार है, पवित्रता का फल जन्म मरण का नाश है, संसार का नाश है. यही अंतर है, यही फर्क है लौकिक धर्म में और जैन धर्म में. जैन धर्म कोई अलौकिक धर्म है, लौकिक धर्म नहीं जी. दया धर्म का मूल है, ये लौकिक सूत्र है. अलौकिक सूत्र में अगर उसको विचार करें तो अपनी आत्मा को जन्म मरण से छुड़ाने की दया वही धर्म का मूल है. यही पात्रता है, वही धर्म का मूल है. अर्थघटन तो होता है भैया, कैसे करना वो दूसरी बात है, लेकिन अर्थघटन तो बैठता है बराबर. मूल मैंने पात्रता धर्म के पहले वो स्वदया की बात है. स्वदया को तो समझे नहीं और पर दया के बड़ाई करें, महत्ता करें. खुद तो भीख मांगे और दान देने की तो बड़ी बड़ी बात करें. खुद तो दान लेने लायक हो और फिर दूसरे को दान देने की बात करें, ये कहां तक उचित है? ऐसे खुद तो दया के पात्र है, दुखी है दया के पात्र है. खुद विचार करें कि अपने को तो दूसरे की दया पालना चाहिए. तो जो स्वदया को समझता नहीं, वो पर दया को वास्तविक रूप से समझ नहीं सकता है. या दूसरे की दया पालना ही एक नाम मात्र बात है, स्वयं ही दया का पात्र तो है. यहां तो एक बोल में दो लक्षण बताए हैं, पहला लक्षण यह बताया कि जीव जिस जीव को जन्म मरण की थकान लगी हो या जिसके अभिप्राय में जन्म मरण का नाश करने का आशय हो, इरादा हो, तो मुझे धर्म करके जन्म मरण का संसार का नाश कर देना है।
सुख चाहिए, सब चाहते हैं, दुख नहीं चाहिए।
किंतु सुख कौन सा सुख, सुख का स्वरूप क्या है? दुख को ही सुख समझें और ऐसे दुख रूप सुख की प्राप्ति की अभिलाषा करें तो सुख तो कैसे होगा, दुखी होगा। कांच को हीरा मान के इकट्ठा करेगा, एक भी हीरा तो मिलेगा नहीं, फिर बेचने को जाएगा तो पता चलेगा तो ये तो धोखा हो गया, ऐसे सुख तो हुआ नहीं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, फिर दुख ही दुख चालू रहा, फिर ढूंढने लगा कि अभी कहाँ से सुख लूँ, अभी यहाँ से लूँ, वहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ। ये हालत अनादि से चालू रही है। इसलिए खास बात इधर पक्की कर ली है कि क्या कोई जन्म मरण का की थकान लगी है भीतर में? जिस मनुष्य भाव जन्म मरण के नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है अच्छी तरह, ऐसी कोई भीतर में भावना चलती है, कोई अभिलाषा ऐसी है कि मैं जन्म मरण का नाश करूं? ये बार 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 आती है सामने, मेरा जन्म मरण कैसे नाश हो? ये बात है तो पात्रता है, अगर इस प्रकार के परिणाम नहीं है तो पात्रता भी नहीं है। पात्रता नहीं है वो धर्म की आशा धरे, धर्म वहां प्राप्त नहीं होगा। क्यों भी जन्म मरण का दुख क्यों नहीं लगता है? एक स्वजन की मृत्यु होती है तो दुख लगता है, मरण का दुख नहीं लगता है। और एक रोग होवे वाला है, कोई ऐसा कहे डॉक्टर के भाई ये शायद नहीं बचेगा, क्या दुख नहीं लगता है स्वयं को, अरे मैं मर जाऊंगा क्या? मरण की तो बातें भी अच्छी नहीं लगती है, खुद मरण तो अच्छा नहीं लगे लेकिन मरण की बात भी किसी को सुनने को नहीं चाहते, इससे बड़ा भारी दुख कौन सा हो सकता है? कोई सर्वाधिक दुख है तो मरण का है संसार। जन्म मरण दोनों समय दुख ही दुख है। के लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता दूसरे की विचार करें, लेकिन अपने लिए कोई चाहता है क्या? अपना मरण होवे ऐसी बात को सोच भी नहीं सकते। और ऐसी बात सामने कभी आ जाती है तो बेशुद्ध हो जाता है। बहुत से लोग मरण के पहले असाध अवस्था में क्यों मरते हैं, कि कभी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है, अब संभव नहीं है कि मैं जिंदा रहूं, हालत बिगड़ जाती है। इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि दुख की मात्रा की हद अपनी शान भान को गवा देता है। ये तो प्रसिद्ध बात है। आप 10 आदमी को मृत्यु शैया पर देखो संसार में, इसमें करीब सभी असाध अवस्था में मरते देखने पाओगे। देखो तो बात करते करते शुद्धि में मरे वो तो बहुत कम होगा, ध्यान नहीं लगता है। ये विचित्रता है, यही दर्शन मोह का प्रभाव है। ये मोह का ये प्रभाव है कि जो प्रत्यक्ष दुख रूप है, जिस दुख को समझने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं, शास्त्र पढ़े तो ये दुख को समझे ऐसी बात नहीं। सारा संसार में कौन मृत्यु को चाहता है, फिर भी व्यामोह ऐसा है, दर्शन मोह का प्रभाव ऐसा है कि इसको गौण करके इस समस्या के सामने देखता नहीं कि ये समस्या का कोई समाधान है क्या। छोटी मोटी समस्या जीवन में आती है, खान पीन की, रहन सहन की, तो इसके लिए प्रयत्न कर करके समय निकालता है, रस लगाता है, अपना पुरुषार्थ लगाता है, शक्ति लगाता है। छोटी मोटी बातों के लिए तो जीवन गुजारता है सारा का सारा, लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया कि इस समस्या का कोई निराकरण हो जाए। कहीं और जगह तो ये बात नहीं है, लेकिन अपने शास्त्र में, अपने समागम में ये बात जब इसका समाधान वाली है तो पूरी ताकत से उसको उठा लेनी चाहिए। दूसरों को तो ढूंढना पड़े कि जन्म मरण नाश करने का रास्ता कैसा होगा, कहाँ होगा, कौन बताता होगा, किस ग्रंथ में होगा, और कहीं होगा तो वही सच्चा होगा, वो कैसे पता चलेगा। लेकिन ये सब बात यहाँ तो कोई ऐसा परिश्रम करने की, सब बातों की जरूरत नहीं, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। अब फिर खुद उसके लिए दरकार नहीं करे तो क्या वो अपराधी नहीं है क्या। जब पता चला कि यहाँ से जन्म मरण का निवेड़ा होता है, फिर भी दरकार नहीं करे तो ये अपराधी नहीं है क्या, है ज्यादा अपराधी। सुगानिधि पात्रता के विषय में तो बहुत तेज बात करते हैं, तो सही ऐसी एक 183 नंबर। योग्यता और पात्रता ठीक होए तो एक ही क्षण में काम हो जाए, ऐसी बात है। कितनी देर लगे?
एक ही क्षण में काम।
पात्रता उत्तम पात्रता हुए, कैसे
उत्तम
उत्तम पात्रता हुए तो एक क्षण में काम होने। जन्म मरण का नाश करने में कितना समय लगे? एक समय लगे। इससे आसान कौन सी बात हो सकती है? ये प्रयत्न को गति मिले, प्रयत्न के लिए बल मिले, ऐसी बात है कि बस एक ही क्षण का काम है उत्तम पात्रता वालों का। फिर हम क्यों इसके लिए तैयार नहीं हुए? ये तैयारी भी पात्रता है और क्या। गुरुदेव भी यही कहते थे, एक समय में मिथ्यात् का नाश होता है और सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है। अनादि की भूल छूटने में कितना समय लगता है कि एक ही समय लगता है। मिथ्यात्व का वय यह सम्यक्त्व का उत्पाद, बस जन्म मरण का नाश हो गया। सम्यक दर्शन होते ही प्रथम समय में जन्म मरण का नाश हो गया। यही बात है कि जिसको थकान लगी हो उसको प्रयत्न चलेगा, जिसको थकान नहीं लगी हो उसको प्रयत्न नहीं चलेगा, वो तो पात्रता में आया ही नहीं है। एक तो यही लक्षण बताया है थकान का, दूसरा जिसको आत्मा कैसा है यह समझने की सच्ची अपूर्व जिज्ञासा अंतर में जागृत हुई हो, ये भी पात्रता का लक्षण है। मेरा मूल स्वरूप कैसा है, असल में मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, इसके लिए सही जिज्ञासा या अपूर्व अंतर जिज्ञासा जागृत हुई हो, ये भी पात्रता का लक्षण है। जीव पात्र होता है तो उसको ज्ञानी गुरु, सच्चा गुरु, आत्मज्ञान के निमित्त होवे, आत्मा का स्वरूप बता सकें, ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग बनता ही है, नहीं बनता ऐसा नहीं बनता, कुदरत बंधी हुई है इसके साथ। जैसे पाप करने वालों को पाप का फल कुदरती मिलता है, पुण्य करने वाले को पुण्य का फल कुदरती मिलता है, किसी भी परिणाम के, किसी भी प्रकार के अशुद्ध परिणाम, मलिन परिणाम भी निष्फल नहीं है, सफल है,
फल मिलता है,
इसका फल मिलता ही मिलता है, वहां कोई अन्याय नहीं है, अन्याय होता ही नहीं किसी को थोड़ा भी, तो उत्तम पात्रता होवे और इसका फल नहीं मिले, या उसको ज्ञानी गुरु नहीं मिले, उसको ज्ञानी का योग नहीं हो, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। ज्ञानी तो विद्यमान होते ही है, लेकिन पात्रता वालों को नजर आता है, जिसकी पात्रता नहीं है उसको बात नजर में नहीं आती है, क्योंकि वो भी दूसरे संसारी जैसे दिखते हैं। और त्यागी हो तो त्यागी भी बहुत हैं जगत में, संसारी भी बहुत है और त्यागी भी बहुत है, त्यागी थोड़े नहीं है, अज्ञानी भी, अज्ञानी त्यागी भी बहुत है, फिर इसमें कौन सा ज्ञानी और कौन सा अज्ञानी हो तो नजर का विषय है, ये नजर पात्रता वालों, जिसकी पात्रता है उनको पता चल जाता है कि यही ज्ञानी है। अगर मुझे आत्मज्ञान चाहिए, जन्म मरण का नाश करना हो तो मुझे इनका समागम करना आवश्यक है, ये मेरे लिए जरूरी है, ऐसा उसको बराबर निश्चय होता है और उसको आत्मज्ञान का लाभ अवश्य होता ही है। लेकिन यह जीव कभी जिज्ञासा में भी नहीं आया, ये जरूरी नहीं कि पहले से थकान लगे बहुभ्रमण की, क्योंकि संसारी प्राणी है, अनेक प्रकार की समस्या और उलझन में खड़ा है, कोई नहीं भी खड़ा है, कोई खड़ा भी है तो सीधी जन्म मरण की बात आगे नहीं हो, लेकिन कम से कम विचारक आदमी हो, विचारवान हो, बुद्धिमान हो तो उतना तो विचार करेगा आखिर में मेरा स्वरूप क्या है और ये सब कैसे चल रहा है, ये जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है। समाधान तो नहीं होने का बहुत सा कारण है कि कोई पाप करते हैं और बहुत संसार में सुखी दिखने में आते हैं, संसार में लोगों जिसको सुखी कहें कि भाई मकान है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, वो है, वो है, सब प्रकार का सुख चैन है, तंदुरुस्ती है, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दिखने में आते, और करता है पाप, और कोई प्रामाणिक है, बहुत वैसे गुणवान है, कोई संयोग अच्छा नहीं दिखता है, या कहीं प्रकार की आपत्ति और समस्या दिखने में आती है। विचारवान को तो ये कम से कम पता चलना नहीं कि ये बात कैसे होती है, ये तो एक हकीकत है। जो नजर के सामने हकीकत है उनको तो टालेगा कैसे, बात तो ठीक नहीं दिखती है कि जिनको सुख होना चाहिए उनको तो सुख नहीं दिख रहा है, और जो चोरी करता है वैसा अच्छा काम नहीं करता है, अनेक प्रकार के पाप के कार्य करता है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था दिखने में आती है, उसको मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसा दिखने में आता है। व्यवस्था सच सत्य क्या है, सच बात क्या है, और ये किस व्यवस्था से ये जगत चल रहा है, उन्हीं पाप के जो प्रसिद्ध फल दिखने में आते हैं, नजर आते हैं, उसमें समाधान नहीं हो सकता है। विचार मन में तो उसकी गहराई में जाएगा। ये पुण्य और पाप दो तत्व है, इनका प्रभाव है जगत में, आत्मा भी एक तत्व है, इनकी हस्ती है, इनका कौन सा प्रभाव है इसमें, पहले उनको ये प्रश्न उठता है। जो श्रीमद जी ने 15 साल की उम्र में जो बात किया, तो मैं कौन हूँ, मैं असल में कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप कैसा है, मैं मनुष्य होकर के आया तो कहाँ से आया, पहले ही मैं मनुष्य था या और कुछ था, दूसरे जीव मनुष्य नहीं है ऐसे भी नजर आते हैं, पशु पक्षी आदि हैं, ये जीव ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, मुझे भी अनेक प्रकार के इच्छा होती है, उसमें कुछ सफल होती है, कुछ सफल नहीं होती है, क्या कारण है, और एक मिनट के पीछे क्या होने वाला है, ज्ञान होते ही होते हुए भी मुझे इसका पता क्यों नहीं चलता, बुद्धिमान को तो ये सब प्रश्न उठेगा ही। इन सारी बातों का समाधान जिनागम में मिलता है, और इन सारी बातों का समाधान ज्ञानियों के पास से मिलता है। वो उसी दिशा में अपना प्रयत्न लगाना है तो सब बात बराबर अच्छी तरह समझ में आ सकती है, और किसी भी प्रकार की असमाधान नहीं रहे, यही परिस्थिति सर्वांग समाधान स्वरूप अपनी आत्मा मूल स्वरूप परमात्म पद समझ में आता है, सर्वांग समाधान स्वरूप है, फिर कोई उनको असमाधान के लिए प्रश्न खड़ा नहीं होता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे ऐसे अनंत गुणों का भंडार है, जब ही देखो तो ये तो आगे आ गया, शाश्वत खान है, आत्मा ज्ञान और आनंद आदि निर्मल गुणों की शाश्वत खानी है। खाने वाला गुरु मिलता ही है, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी तो होता ही है जगत में, लेकिन अपनी पात्रता नहीं है तो पहचान नहीं होती है, और पात्रता होने जिसकी होती है उसको पहचान हो जाती है, पहचान होने से उनको लाभ दिखता है कि मेरा जन्म मरण का नाश होने की जो समस्या है ये यहाँ से सलटेगी। तो सारे जगत के और अपने उदय के संसार के सभी कार्यों को गौण करके फिर ये बड़ी समस्या को सलटाने के लिए अपनी शक्ति को लगाता है, ये तो तुलना करने की बात हो गई कि कहाँ कितना लाभ है, और कहाँ शक्ति लगाना कहाँ नहीं लगाना, ये तो तुलना करने के बाद हो गई।
बात सही है लेकिन शक्ति दूसरी जगह जा रही है।
बात
शक्ति बात तो सही है,
सही है, ऐसा ऊपर ऊपर तो कहे, ऊपर ऊपर से तो कहे के बात तो सही है, लेकिन उसकी कीमत नहीं करे, कीमत तो संयोग की करे।
हो जाती है
कि पहले तो दुकान ठीक चलनी चाहिए, फिर अगर समय बचेगा तो इसके लिए मैं थोड़ा समय निकालूंगा, शक्ति लगाऊंगा। ऊपर ऊपर से तो कहे कि सही है और भीतर से माने कि वो सही है, मुख्यता किसको देनी इस पर कार्य सिद्धि का आधार है। जिस कार्य की मुख्यता देने में आती है उसी कार्य की सिद्धि होती है, जो गौण रहता है वो कार्य सफल नहीं। माया ऐसी चीज है कि खुद को क्षेत्रपिंड में भोग बनना पड़ता है उसका। इसका भोग कौन बनता है? स्वयं ही उसका भोग बनता है। उसको ये लगता है कि नहीं, मैं तो धर्म का कुछ, धर्म की दिशा में कुछ न कुछ प्रयत्न करता हूँ और मेरे संयोग की व्यवस्था भी अच्छी तरह संभालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला संयोग को ही संभालता हूं और धर्म का कुछ नहीं करता हूं, ऐसा तो नहीं है। बस यही बड़ी क्षेत्रपिंडी होती है अपने आप के साथ। तो कहेंगे कि लोग शायद भुलावे में पड़ेंगे लेकिन कर्म कभी भुलावे में नहीं पड़ते। मशीन आता है ना, काउंटिंग का मशीन आता है, कैलकुलेटर कभी नहीं भूलता। आदमी भूल करता है हिसाब किताब में, आदमी से भूल होता है, कंप्यूटर कैलकुलेटर से भूल नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी स्वभावगत चीज हो गई, उसकी जो मैकेनिज्म है उसमें वो बात ठीक कर दी, बात बिल्कुल बिना भूल चलेगी। ऐसे दूसरे लोग को ये लगेगा कि नहीं ये तो धर्मी है लेकिन कर्म है वो भूल नहीं करेगा, वो तो उसको बराबर मान देगा, वो तो बंधन में पड़ेगा ही पड़ेगा। और यह जैन धर्म में लोक संज्ञा सबसे विरुद्ध बात मानी गई, मानी जाती है लोक संज्ञा। लोक संज्ञा मैंने लोगों की नजर में धर्म धार्मिक इज्जत का अभिप्राय रखना है और उसी अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्ति चेष्टा करना, ये लोक संज्ञा है और ये धर्म के बिल्कुल खिलाफ चीज है। जिसको लोक संज्ञा है उसको तीन काल में धर्म नहीं होता। या धर्म जैसे अमृत है, धर्म है वो अमृत है आत्मा के लिए, तो लोक संज्ञा कातिल जहर है, विष है आत्मा के लिए। दोनों इतना परस्पर विरुद्ध है। बस अपना हित का ही एक लक्ष्य रखना, लोग चाहे माने नहीं माने कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा धर्म मेरे हित के लिए मैं करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? मुझे जन्म मरण का नाश चाहिए, मुझे सभी प्रकार के दुखों का नाश चाहिए, निराकुल आत्मिक शांति और सुख चाहिए, इसलिए मैं धर्म करता हूँ। किसके लिए करता
हूँ?
बात खत्म। भूमि पात्रता का विषय चला है, दृष्टांत दिया है कि जिस जमीन में